नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक घटना मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, बहुत ही सुंदर और सत्य घटना, प्रेरक है हमारे आज के विषय से जुड़ी हुई। 4 जुलाई 1952, एक यंग लड़की कैटलिना चैनल को पार करने के लिए सागर में उतरी। उसने पूरे उत्साह के साथ तैरना प्रारंभ किया और 21 मील की जो दूरी थी, लगभग 20.5 मील की दूरी उसने तय कर लिया 15 घंटे में। लेकिन वो थक के बहुत चूर हो चुकी थी, ठंड भी बहुत थी, अब उसका हौसला जवाब देने लगा था। सामने बहुत धुंध था और उसे अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था कि और कितनी दूर तक मुझे तैर के जाना है। उसका हौसला जवाब दे गया और उसने विड्रॉ कर लिया, वो वापस शिप पे आ गई। बाद में जब उसे पता चला कि केवल आधे मील की दूरी और शेष रह गई थी, तो उसे बहुत अखरा और उसने ये कहा कि काश मुझे लक्ष्य दिखाई दिया होता तो मैं आधे मील की दूरी और तैर के पार कर लेती। ये बात और है कि 2 महीने के बाद फिर से उस लड़की ने प्रयास किया और सफलता अर्जित की। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो ये कि यदि सामने लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है और हम असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव कर जाते हैं। लक्ष्य के विषय पर ही हम चर्चा करते आ रहे हैं और अब तक हमने देखा कि क्यों युवा लक्ष्य नहीं बनाता है, क्या क्या कारण उसके होते हैं और साथ ही यदि वो लक्ष्य बनाए तो किन किन बातों पर ध्यान दें। आज हम पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण चर्चा है और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू
प्रता जी। कल भी हम लोगों ने लक्ष्य के विषय पे बहुत सुंदर चर्चा की जो युवाओं से संबंधित थी। एक बात जो बार बार जेहन में आती है कि युवा वर्ग के तौर पे उनके प्रतिनिधित्व करते हुए मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग एक अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छी सैलरी वाली नौकरी हो, केवल इसी को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। लेकिन क्या यही एक युवा का लक्ष्य होना चाहिए या इसके अलावा और कुछ होना चाहिए?
हाँ, देखिए, जीवन में ये सब चीजें तो आवश्यक भी हैं और हर मनुष्य ने प्राप्त करना चाहता है
जी,
मान सम्मान भी चाहता है। उसके पास धन होगा तो वो अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाएगा
जी,
और उसका समाज में सम्मान भी बहुत होगा। लेकिन यही सब प्राप्त कर लेना केवल हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए
जी।
मैं सिंपल भाषा में कहूं कि हमारे लक्ष्य में एक शब्द हम जोड़ दें, मूल्य निष्ठ लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो हमें संपूर्ण मानव बनाए, जो हमें समाज में उस तरह भी प्रतिष्ठा दिलाए जैसे महात्मा गांधी को है, जिनके पास पैसा नहीं था और उनके पास वो प्रतिष्ठा है जो बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं भारत में उनको तो कोई जानता भी नहीं। एक्चुअली कभी कभी अखबार में नाम निकल जाता है, 10 richest लोगों के नाम लोग पढ़ के भूल जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को बच्चा बच्चा जानता है। तो एक संपूर्ण मानव बनने का लक्ष्य, हम ये नहीं कह रहे कि धन कमाना, बहुत अच्छा बंगला बनाना, बहुत अच्छी नौकरी पा लेना, इसको हम इग्नोर कर दें। ये भी जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं और समाज की डिमांड भी।
माना हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे लक्ष्य हैं उनका उनमें से एक लक्ष्य ये हो कि हमारे पास धन हो, संसाधन हो, या हमारे पास अच्छी गाड़ी बंगला या ये सारी चीजें हो, तो हमारे अनेक लक्ष्यों में से ये एक लक्ष्य है। लेकिन इनके अलावा भी हमारे
मान लो किसी ने बहुत धन कमा ही लिया
जी,
गलत तरीकों से कमा लिया और गड़बड़ हो गई, उनका नाम करप्शन केसेज में आ गया या इनकम टैक्स वालों ने उनके घर पे छापा मार दिया, या वो किसी ऐसे कर्म के कारण जेल में चले गए, सलाखों के पीछे आ गए, तो इससे उनका धन, उनका पद पोजीशन, या उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है, बहुत अच्छा मकान भी बना दिया है
जी,
ये सब फिर बेकार हो जाते
हैं।
इसलिए एक मूल्य निष्ठ लक्ष्य।
एक बहुत सुंदर चर्चा आपने शुरू किया है भ्राता जी, एक ये कि लक्ष्य तो हर एक बना ही लेता है, और ज्यादातर जैसे हमारी चर्चा होती आ रही है कि धन ही विशेष करके एक लक्ष्य के रूप में आता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन हो, और ज्यादातर लोग आज यदि देखा जाए तो शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि हमारे पास जल्दी से जल्दी ये सारे धन साधन आ जाए। लेकिन ये जहां मूल्यों की बात शामिल हुई है, ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि मूल्य ना हो तो वो लक्ष्य कहीं ना कहीं हमें सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं।
लक्ष्य तो एक आतंकवादी बनाता है
जी,
और उसके पीछे भी उसकी ज्यादा मानसिकता धन की होती है। बहुत करके जो कैसे सामने आए
जी,
कि वो लड़के गरीब थे, अब उनको अपने परिवार को पालने के लिए नौकरी भी नहीं थी, अब उनको कह दिया गया 25 लाख दे देते हैं
जी।
25 लाख उसने ले लिए, उनका परिवार सुखी हो गया और वो चल दिया लोगों को मारने
जी।
किसको मारना उसको कुछ पता नहीं, उसको मारना है, ये भी एक लक्ष्य है। और उनका परिणाम हम सब जानते हैं, या तो वो खुद मृत्यु को प्राप्त होते हैं
जी,
या वो जेल में सटते हैं। तो लक्ष्य तो ये भी हैं, और भी कईयों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, पर आजकल बीज हो गया है धन कमाना। तो लक्ष्य एक सुंदर लक्ष्य हो, ऐसा लक्ष्य ना हो जो हमें आत्मसंतोष ना दे। देखिए हमारा सुंदर लक्ष्य कहीं ना कहीं हमें आत्मसंतोष देगा, और ऐसा लक्ष्य जो विकृत टाइप का है उससे आत्मग्लानी होगी, तब तो मनुष्य धन के लोभ में कुछ भी कर लेता
मतलब
है।
मतलब जब हम लक्ष्य बनाएं तो भ्राता जी इस चीज का जरूर ध्यान रखें, आपके कहने का भाव जो मैं समझ पा रहा हूं कि ऐसा लक्ष्य जो हमें आत्मसंतोष दे, हमें शांति दे, जो हमारा भी विकास करे और साथ ही समाज के लिए भी हानिकारक ना हो, हितकर हो, हमारे परिवार के लिए भी हितकर हो।
यही बात है कि देखिए चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो बड़ा डाकू हो, चाहे वो बंदूक लेकर फटाफट फायरिंग करके किसी को भी मार रहा हो, मनुष्य तो वो भी है। और मनुष्य में वो सब कमजोरियां और वो सब खूबियां हैं जो आत्मा में अंतर्निहित हैं। तो अगर एक मनुष्य आत्मा के संस्कारों के मूल नेचर के विरुद्ध जाता है तो उसे आत्मग्लानी तो होगी, उसको अशांति से तो गुजरना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, दिल्ली की जेल में पड़ा हुआ एक प्रसिद्ध आतंकवादी, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसने बहुत एक घृणित कृत्य किया था भारत में, जिसको फांसी की सजा थी और सरकार अभी तक नहीं दे रही है, 8-10 साल हो गए हैं, वो कहता है मुझे फांसी दे दो, क्योंकि वहां जेल में पड़ा पड़ा। अब निश्चित रूप से वो आत्मग्लानी से जिंदा ही जलता रहता होगा, उसका चित्त बेचैन रहता होगा, तो वो मरने को ही अपनी सच्ची शांति मानता होगा। तो देखिए हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस बात का ध्यान रखें, जैसा आपने कहा कि वो जनहितकारी हो।
बिल्कुल,
थोड़ी देर के लिए अगर वो हानिकारक है तो उसका नुकसान हमें अवश्य होगा और हमारा पूरा भविष्य अंधकार में हो सकता है।
बिल्कुल, तो भ्राता जी ये एक बहुत सुंदर बात निकल के आई है कि जब भी लक्ष्य बनाया जाए तो शॉर्टकट्स न अपनाए जाएं, हम ये देख लें कि वो मूल्यों पर आधारित हो, इस बात को भी हम देख लें कि वो कहां तक मुझे संतुष्टि शांति प्रसन्नता देने वाली है, और साथ ही कहां तक मेरे परिवार को समाज को भी, जैसे हम कहते हैं कि परिवार का नाम रोशन हो, तो परिवार का नाम रोशन करने वाला हो, ना कि परिवार का मुंह छिपाने वाली बात हो जाए।
देखिए यही होता है युवकों के साथ क्या हो रहा है
जी,
कि अगर उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है
जी,
वो गलत गलत बातें करते हैं आजकल टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, अच्छे समाचार तो कम से कम आते हैं, गलत समाचार ही ज्यादा आते हैं। और हमारे टीवी वालों को, चैनल्स वालों को या प्रिंट मीडिया वालों को ये बिल्कुल पता नहीं कि तुम्हारी हर बात से आज का युवक बहुत कुछ सीख रहा है। तो जहां निगेटिव एनर्जी चारों ओर फैली हुई है वहां वो गलत चीजें सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गैंग रेप का केस देखा और उनके मन में ये भावना आएगी कि हमें इससे मुक्त रहना चाहिए। कुछ अच्छे युवक भी होंगे जिनके मन में भावना आएगी, लेकिन बहुत लोग उस घृणित कर्म को बार बार करते रहते हैं, इसलिए अखबारों में ऐसे समाचारों की कोई कमी नहीं होती। तो मैं कह रहा था कि जो एक फ्रेंड सर्किल होता है किसी भी युवक का, उसमें एक युवक को यह ध्यान रखना चाहिए अगर वो बेकार की बातें करते हैं
जी,
अगर वो गंदी बातें करते हैं, अगर वो भविष्य में कुछ गलत लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भाई जैसे बहुत जगह होता है दिल्ली आदि में, बड़े शहरों में चलो भाई एक ग्रुप बन गया, और नहीं तो माताओं बहनों की सोने की चेन तोड़ के लानी है। अब वो सोचते हैं सस्ता कमाई का साधन है, 5-10 का ग्रुप बन गया, कहीं ना कहीं आजकल मोबाइल है उससे संपर्क रख लिया। तो ऐसे जो लक्ष्य हैं वो मनुष्य की वास्तविक जो योग्यताएं हैं अंदर में उनको नष्ट कर डालते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान फिर होगा कि अगर लक्ष्य मूल्य निष्ठ नहीं है तो अंदर छुपी हुई सारी योग्यताएं भी अंदर ही
दब जाएंगी। तो परिश्रम के माध्यम से आगे बढ़ने का लक्ष्य रखें, सुंदर लक्ष्य रख करके, ना कि इस प्रकार से लूट खसोट के या कुछ बहुत ही शॉर्टकट्स अपना के या किसी की लेग पुलिंग करके। कई बार प्रताप जी ये भी होता है ना कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, इसके कारण मैं कईयों के पैर खींच के लोगों को नीचे गिरा देता हूं और ये समझता हूं कि मैं आगे बढ़ गया। तो ये भी कई बार देखने में आता है संगठनों में या कई कंपनीज में कि कोई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ये भी तरीके अपनाता है, किसी की ईर्ष्या, किसी की ग्लानी, किसी की लेग पुलिंग, ये भी कहां तक सही?
हाँ, देखिए ये बात आई है तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो कंपनी हो, फैक्ट्री हो या सरकारी दफ्तर हो, इसमें इस तरह अगर किसी भी गलत तरीके से अयोग्य व्यक्ति ऊपर पहुंच जाते हैं
जी,
तो इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑफिस को बहुत नुकसान होगा। और ये समझदार लोग जानते ही हैं, उनके डायरेक्टर या उनके चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर इस बात को समझते हैं और उन्हें समझना चाहिए कि ऐसे ही प्रमोशन दे देना
जी,
किसी भी आधार पर दे देना, योग्यताओं के बिना दे देना, सिफारसियों को दे देना, लेग पुलिंग वालों को दे देना, ये अपनी उस कंपनी को या फैक्ट्री को नष्ट करने का एक वो अपने आप तरीका खोज लेते हैं। इसलिए इससे उन्हें भी आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। लेग पुलिंग करके किसी भी पॉलिटिकल अप्रोच से एक अयोग्य व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाता है, जहां योग्यताओं की कमी के कारण वो असफल हो रहा है, जहां लोग उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसे भी भला आत्मसंतोष कैसे मिलेगा। मैंने बहुत देखे हैं बड़े बड़े ऑफिसर, एक जगह में गया, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उड़ीसा में, उसके प्रेसिडेंट इतनी ज्यादा उन्हें टेंशन थी, इतनी ज्यादा टेंशन थी, और टेंशन भी किससे थी, अपनी पत्नी से। उस फैक्ट्री का, जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है गवर्नमेंट की, उसका कार्य उसके लिए एंजॉयमेंट था, लेकिन घर में पत्नी उसके लिए बिगेस्ट टेंशन थी। बेचारा आंसू आ गए उसको सबके सामने, टेंशन पे चर्चा कर रहे थे वहां। तो ऐसे ये उनकी बात नहीं, वो तो योग्य व्यक्ति था, लेकिन अगर अयोग्य व्यक्ति कहीं ऐसे पद पर पहुंच जाता है तो वो खुद भी टेंस होगा, दूसरों को भी टेंशन क्रिएट करेगा, और इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा नुकसान,
हित नहीं होगा उसका। तो मतलब पहुंचे तो अपनी योग्यता के दम पे पहुंचे और साथ ही अच्छी परिश्रम करके, अच्छी मेहनत करके, और जो आपने मूल बात कही कि अपने जीवन में मूल्यों को धारण करके पहुंचे, तो वो मूल्य भी कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाता रहेगा और साथ ही उन्हें आत्मसंतोष भी देता रहेगा। जी मुझे बहुत सुंदर एक घटना याद आ गई, लिंकन जी से किसी ने पूछा था कि जब आप अपने से किसी योग्य व्यक्ति को देखते हैं तो क्या आपके मन में ईर्ष्या पैदा होती है? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था, उन्होंने कहा था नहीं, मेरे मन में ईर्ष्या पैदा नहीं होती, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी योग्यता को इससे भी कहीं अधिक कैसे बढ़ाऊं।
हां, देखिए यही तो उनको एक सुंदर स्थिति पर ले गई, अब्राहम लिंकन को, जो एक नीचे स्तर से हाईएस्ट स्तर पर पहुंचा।
वो बिल्कुल गरीब थे बेटा जी, उनको लिखने के लिए पेंसिल भी नहीं होती थी, वो शायद कोयले से लिखा करते
तो
थे।
यही कि मनुष्य अगर ईर्ष्या द्वेष रखता है, मनुष्य अगर लेग पुलिंग कर रहा है, दूसरों को आगे बढ़ता देख उसमें आग लग रही है, तो व्यक्ति स्वयं भी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कितना सुंदर एटीट्यूड है कि दूसरे को जब अपने से योग्य देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को भी योग्य बनाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो, ये भी लक्ष्य है मनुष्य का। और ऐसे सुंदर लक्ष्य वास्तव में मनुष्य को महामानव की पदवी दिला देते हैं।
जी बहुत सुंदर है प्रताप जी, ये बात तो रही कि हम मूल्य निष्ठ लक्ष्य बनाएं ताकि हमारा जीवन सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, आदर्श हो, लोगों के लिए प्रेरक हो, और हमारे जाने के बाद भी लोग हमें बहुत सम्मान से याद करें। एक बात आती है प्रताप जी कि लक्ष्य तो हमने चलिए बना लिया, लेकिन लक्ष्य बनाने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है कि प्रैक्टिकली हम क्या क्या करें जो हमारा लक्ष्य सिद्ध होता चले, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है लक्ष्य का।
बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर बात है, और इसमें हम अपने श्रोताओं के सामने 4-5 बहुत सुंदर बातें रखना चाहते हैं
जी।
मैं एक छोटी सी बात लोगों को सिखाया करता हूँ, युवकों को सिखाता हूँ कि जो भी आपका लक्ष्य है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक चित्र बनाए, जिसको मानसिक चित्र कहते हैं, जिसको विजन कहते हैं
जी।
और वो लक्ष्य मुझे मिलेगा ही, और बल्कि इससे भी अच्छी बात यह होगी कि हम ऐसा एंजॉय करें कि वो लक्ष्य मुझे मिल गया है, सबकॉन्शियस माइंड को इसे एक्सेप्ट करा दें, तो ये बहुत सुंदर एक चीज होगी। मैं एक उदाहरण दूं आपको, एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहा था, बहुत अच्छी पोस्ट उसके लिए वैकेंसी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी अच्छी कंपनी का। उसने मेरे से पूछा, तो मैंने उसे ये चीज पहले सिखाई थी, डिटेल चर्चा तो हम इनकी आगे करेंगे, कि तुम विजन बनाओ, और मैं उसको स्पिरिचुअल ऐसी प्रैक्टिस सिखाई, हंसी की बात भी है, वो भी हंसा था
जी।
और श्रोता भी हंसेंगे। मैंने उन्हें कहा, ये प्रैक्टिस करने के बाद ये संकल्प करना कि जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आता है वही पूछे जाएंगे। तो वो कहा, ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा, आप जरा ये विधि अपना के तो देखो
जी।
दूसरी बात मैंने उसे कही, आप अभी से बिल्कुल ये संकल्प कर दो, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, आई एम सेलेक्टेड, और ऐसा देखो कि अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में आ गया है अभी, और उसको एंजॉय करो। तो पिक्चराइज करना,
बिल्कुल, तो एक मनोचित्रण वो करें, एक बना लें कि ऐसा हो गया है जो मैं देख रहा हूँ। और भ्राता जी, इसमें क्लेरिटी का होना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है।
बिल्कुल, संपूर्ण क्लेरिटी से भी एक अच्छा शब्द हम यूज करेंगे, बिल्कुल विश्वास,
विश्वास
कि ये मिला कि मिला, और ये मुझे मिलना ही है, और उसे वो मिल गया था
जी।
उसका इंटरव्यू ऐसा हुआ कि साथ ही साथ अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया।
बहुत सुंदर,
तो बहुत ही अच्छी बात थी। तो पहली चीज है
जी,
मानस चित्रण करना।
प्रताप जी, एक एग्जांपल से, जैसे आपने अभी एक इंटरव्यू का एग्जांपल दिया कि कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उसने इस प्रकार से विजुअलाइज किया, ये एक मनोचित्र उन्होंने बना लिया। ऐसा ही कोई और एग्जांपल कि हमारे
बहुत
युवा
अच्छा।
बहुत अलग अलग फील्डों में प्रयास करते रहते हैं, वो किस प्रकार से अपने लक्ष्य का मनोचित्रण
देखिए, मेरे पास 12वीं क्लास का जो एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे बच्चे बहुत आते हैं जिन्हें हायर एजुकेशन में जाना है
जी।
तो मैं उन्हें सिखाता हूँ, बोलो कितना परसेंटेज चाहते हो आप, वो मुझे बताएंगे, 92, 93, 95
जी।
तो मैं उन्हें कहता हूँ, पहली चीज तो आप ये करेंगे कि 7 दिन तक रोज सवेरे 5 बार कम से कम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ लिखेंगे कागज पर, मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं। बहुत अच्छी चीज है। तो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करने लगेगा, और इसके पीछे एक रहस्य है कि जो नंबर देने वाले हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ेगा, और जो हमने क्रिएट किया है ना विजन, लक्ष्य, बस वो काम करेगा, उनके मन को वो बदलेगा, उनकी बुद्धि को वो बदलेगा, और वो वैसे ही मार्किंग करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि हम एक ऐसा विजन बनाएं फाइनल कि मार्कशीट आ गई है, बिल्कुल जैसे हम मार्कशीट देख रहे हैं और मेरे टोटल इतने मार्क्स हैं, इसमें भी संपूर्ण विश्वास के साथ। तो मेरे पास ऐसे बहुत लोग स्टूडेंट्स के अनुभव हैं जिनको वही प्राप्त हुआ जो उन्होंने विजन बनाया।
शायद इसमें ये भी होता होगा प्रताप जी कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्तियां हैं वो भी उस लक्ष्य की ओर चलने लगती होंगी और उसे प्राप्त करने में मदद करने लगती
होंगी। इसमें ये है कि हमारे ब्रेन की समस्त शक्तियां हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में एक्टिव हो जाती हैं, और जैसे मैंने कहा, जो मार्क्स दे रहा है, जो कॉपी चेक कर रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड इट बिकम्स ए यूनिवर्सल माइंड। तो इसमें क्या है कि हमारे थॉट उनके थॉट्स को अफेक्ट करने लगेंगे, और बस उनके मन में वही थॉट्स उठेंगे जो हम उठा रहे हैं, उनका मूड भी अच्छा होगा। अब देखिए, कॉपी चेक करने वाला प्रोफेसर
जी,
टीचर
जी,
मान लो घर में लड़के आया है, उसका मूड आज ऑफ है और वो कॉपी चेक कर रहा, तो कैसी मार्क देगा?
बिल्कुल
कहेगा, क्या लिखा है ये, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है।
इसलिए ब्राता जी, कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मैंने लिखा तो बहुत अच्छा था, शायद वो चेक करने वाले का मूड ठीक नहीं था।
बिल्कुल यही होता है, सच्ची बात यही है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का जो यूज है वो उनके मूड को फ्रेश भी रखेगा, ये हमें मदद मिल जाएगी। और इस तरह अगर हम बहुत सुंदर विजन बनाते हैं तो बहुत सफलता होगी।
लेकिन भ्राता जी एक चीज भले ये विषय से थोड़ा सा हटके है, विद्यार्थी कहीं इसे अन्यथा तो न लें कि भाई मैं कुछ चीजें पढ़ूं और उसे ही अपने अंदर सबकॉन्सियस में डालूं और मैं वहां से अपना कनेक्शन जोड़ लूं और यही हाँ, चीजें वो दे या वही चीजें चेक करे।
ये होगा नहीं। सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रिजेक्ट करता जाएगा, जो चीज रियल नहीं है ना। मान लो अपनी योग्यताओं के अनुरूप उसने विजन नहीं बनाई, उसके मार्क्स आते थे 60 और उसने एकदम 90 पे बना दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा।
मतलब अपना लक्ष्य थोड़ा बड़ा जरूर बनाए लेकिन इतना बड़ा ना बना दें जो एक्सेप्ट ही ना कर सके।
अपनी क्षमताओं को जानते हुए 60 आ रहे हैं तो एक एग्जाम में 65, दूसरे एग्जाम में 70, ऐसे 5% बढ़ाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करता रहेगा और मनुष्य अपनी योग्यताओं का विकास भी उसी अनुसार करता रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल चलने चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड प्लस बौद्धिक क्षमता। अगर बौद्धिक क्षमता बहुत कम है और सबकॉन्शियस माइंड में हमने बहुत हाईएस्ट टारगेट भर दिया तो दोनों का जो क्लैश होगा वो उस प्राप्ति
वो सफलता ही दिलाएगा या निराशा दिलाएगी।
अब इसमें दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे इंटरव्यू के लिए हो, चाहे किसी को अपने बिजनेस में हो, किसी फैक्ट्री वाले को अपनी फैक्ट्री के प्रोडक्शन में हो, किसी कंपनी वाले को कहीं हो, उसके लिए दृढ़ इच्छाधारी होना जिसकी बहुत कमी लोगों में पाई जाती है, वो कहीं ना कहीं निराशा में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका उमंग उत्साह कम हो जाता है, भला ये भी होगा क्या, कहीं उनके साथ ही उनको हतोत्साहित कर देते हैं। लेकिन हमारा मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा हो, और इसके लिए हम तो राजयोग सिखाते हैं, सुंदर विचार क्रिएट करना सिखाते हैं, जहां जहां हमारे मन की शक्तियां नष्ट होती हैं उसकी अवेयरनेस देते हैं ताकि मनोबल बढ़े। इस टॉपिक पर तो हम बाद में आएंगे ही। तो इच्छा बहुत दृढ़ हो, संपूर्ण हो, तो हमारी इच्छा शक्ति हमें उस लक्ष्य तक ले जाने में बहुत मदद करती है।
तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम लक्ष्य की ओर बढ़े। भ्राता जी एक आपने जो दृश्य दिखाया वो एक शॉर्ट टर्म गोल की तरह था कि हम अपने इस एग्जाम में इतना मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं और वो इस प्रकार से अपने आप को एक मनोचित्र दे। लेकिन एक पूरे जीवन का यदि एक लक्ष्य देना चाहता है कोई व्यक्ति अपने आप को, तो वो किस प्रकार का चित्र रखे अपने
सामने? देखिए इसमें ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक जीवन का भी लक्ष्य मनुष्य को देना ही चाहिए।
और जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे भ्राता जी, तो उसके साथ साथ मैं भी चाहूंगा कि जैसे एक हम मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल या सोशल, इन सभी चीजों के बारे में कह रहे थे, तो आप एक सामूहिक रूप से एक ऐसा दृश्य मनोचित्र जरूर रखें हमारे दर्शकों के सामने जिसे वो अपने सामने रख सकता है या जिसको आदर्श रूप में रखते हुए वो अपने जीवन का लक्ष्य सामने।
मान लो एक विद्यार्थी है और उसको एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है या उसको एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना है, उसको DRDO में जाना है, और तो वो पहले अपने मान लो इस और उस लक्ष्य के बीच में उसके पास 7-8 साल का पीरियड है।
बिल्कुल।
तो इसमें वो एक एक साल के छोटे छोटे लक्ष्य बनाए,
बिल्कुल,
उनका मूल्यांकन भी करें, वो अपने को देखे भी कि अगर उसे एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक DRDO का बनना है और उसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, उसे इंजीनियरिंग करने के बाद उसके इंजीनियरिंग में भी इतने ऐसा ग्रेड होना चाहिए, ऐसे मार्क्स होने चाहिए, और फिर जो उसको उसके लिए कंपटीशन देना पड़ेगा उसमें भी उसकी ये तैयारी होनी चाहिए, मानसिक रूप से भी उसको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा
जी,
और बौद्धिक रूप से भी अपनी क्षमताओं को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, और इसी में जुड़ जाता है स्पिरिचुअलिज्म, जिससे स्पिरिचुअलिटी का यहाँ अर्थ है वो अपने मन को प्रसन्न भी रखे, इस लक्ष्य को टेंशन न बना दे। कहीं कहीं ये भी हो जाता है कि एक ऊंचा लक्ष्य ले लिया तो वो लक्ष्य उसके लिए टेंशन बन गया, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई उससे बात करता है तो उसे गुस्सा आता है, हटो मुझे पढ़ना है, मुझे ये सब नहीं, यहाँ शोर क्यों हो रहा है, TV बंद करो, घर में ऐसा क्यों, मेहमान क्यों आ गए हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे यहाँ पहुंचना है। तो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है रिलैक्सेशन, जिसमें उसको रिलैक्स भी करेगी ये स्पिरिचुअलिटी, और वो उस लक्ष्य को एंजॉय करेगा। ठीक है, लक्ष्य मिलेगा ना, इसमें बहुत टेंशन में आने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें रात दिन पढ़ना है।
तो कई लोग तो, यही होता रहता जी, लक्ष्य मिल जाए तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उस दरमियान भी अपने आप को खुशी में हम रखें, खुश होकर के लक्ष्य की ओर बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट
स्पिरिचुअलिटी है। कि मान लो कहीं हमने 7 साल हमारे पास हैं और 7 साल में हमने ईयरली एक प्लान बना लिया है कि इस साल में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस साल में हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, फिर हम ये तैयारी कर लेंगे, फिर हम गेट एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम है, कैट का एग्जाम बहुत सारे हैं, मैं तो हंसी में कहा करता हूँ रेट का भी एक एग्जाम होना चाहिए, तो हम ये एग्जाम देंगे, ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम रिलैक्स रहें, बहुत प्रसन्न रहें, बहुत पीसफुल रहें, सोशल भी होकर रहें। ऐसा नहीं हम अपने फ्रेंड्स से मिलना छोड़ दें, ऐसा नहीं हम किसी फंक्शन में जाना छोड़ दें, ऐसे नहीं घर में किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है और हम अलग अलग रहें, हम तो तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं। यही स्पिरिचुअलिटी का महत्व है कि वो इन सब चीजों को जोड़ देती है। और देखिए, हम ये बात बार बार कहेंगे अपने विशेषकर विद्यार्थियों को कि जितना उनका मन प्रसन्न रहेगा, जितने वो पीसफुल रहेंगे, यानी नो टेंशन, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उनकी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ेंगी, चाहे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी हो, चाहे उनका मनोबल हो, ये बहुत बढ़ेगा और वो तब इस यात्रा को बहुत एंजॉय करेंगे।
तो भ्राता जी, जो एक बड़ा हम देख रहे हैं पूरे जीवन के लिए, जो एक हम चित्र तैयार कर रहे हैं लक्ष्य के रूप में, उसमें जो आपने सभी बातें कही, मेंटल है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, उन सभी बातों को हम देखें कि सभी के साथ मैं बहुत ही आनंदित हूं, सभी को समय दे रहा हूं और हर फील्ड में मैं अपना 100% दे रहा हूं, एंजॉय करते हुए
सफल हैं हम हर फील्ड में। कोई हमें ये नहीं कह रहा कि भाई ये तो बस सीरियस हो गए हैं, इनको तो बस पढ़ना पढ़ना है और किस चीज से इनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, परिवार में आपसी प्यार भी बहुत रहता है, फंक्शंस भी होते हैं तो एंजॉयमेंट भी होते हैं। तो मैं सभी को ये कहता हूं कि बिल्कुल ये भूल जाओ कि बहुत पढ़ने से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे, नहीं, आप अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, अपने को बहुत फियरलेस करो और स्ट्रेस फ्री करो, एंजॉय करो, तो आप ज्यादा सफल होंगे। मैंने ऐसे भी देखा, सेकंड क्लास स्टूडेंट थे आज फर्स्ट क्लास साइंटिस्ट हैं, टॉप क्लास स्टूडेंट थे वो बेचारे कहीं भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल ध्यान पढ़ने पढ़ने पे दिया, किताबों पर, जिसको लोग कहते हैं ना किताबी कीड़े बन गए थे, और जो सेकंड क्लास स्टूडेंट थे उन्होंने इन सब चीजों पर अपना ध्यान लगाया, हेल्थ पर भी, मेंटल डेवलपमेंट पर भी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पर भी, सोशल एंजॉयमेंट पर भी,
मतलब इन सभी को मिला करके हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाए,
इसमें हम संपूर्ण मानव बनते हैं।
जी जी जी, बहुत सुंदर भ्राता जी, आज आपने बहुत प्यारी बातें हमारे युवाओं के सामने रखी हैं। वक्त अब इशारा कर रहा है कि आज हम आपसे इजाजत लें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं दर्शकों से मुखातिब होऊंगा। तो आपने देखा मित्रों की बहुत सुंदर रहता है यदि जीवन में एक सुंदर और श्रेष्ठ लक्ष्य है हमारे पास, लक्ष्य को किस प्रकार से हम अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी चर्चा आज हमारी हुई है। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि लक्ष्य की गुह्यता को समझ सकें और जीवन के सुंदर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन के सुंदर लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए हमारी ढेर सारी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। बने रहिएगा, दीजिए इजाजत अपने मित्र रूपेश को, नमस्कार।